राघवेंद्र के घर पर भीड़ लगी थी। वहां महाभोज का आयोजन किया जा रहा था। भीड़ का फायदा उठाकर वैदेही और देव भी उसमें घुस चुके थे। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है आज तो पार्टी होने वाली है। जैसे ही देव ने अपनी बात खत्म की, वैदेही उसकी तरफ घूर कर देखने लगी। तुम क्या यहाँ बारात में आए हो जो तुम्हें खाने पीने की लगी है, उसने कहा। बारात में तो नहीं आया हूँ, लेकिन भूख बहुत लगी है। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो खाना खा लेते हैं ना। वैदेही ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी आरती कुछ औरतों के साथ वहां आई। आप कौन, वो वैदेही के पास आकर बोली। मैं विद्या, यहाँ पास के ही गांव से हूँ, वैदेही ने जवाब दिया। अच्छा वहनी, आप बुरा ना माने तो थोड़ी मदद कर देंगी? अंदर औरतों की बहुत भीड़ है, उन्हें खाना पकड़ाने के लिए किसी की जरूरत है, उनमें से एक औरत बोली। वैदेही को ना चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ी। उसने देव की तरफ देखा और इशारों इशारों में कुछ गड़बड़ ना करने की बात कही। वैदेही आरती और औरतों के झुंड के साथ अंदर आ चुकी थी। वैदेही और देव को महाभोज का कारण अभी भी नहीं पता चल पाया था। जहां देव बाहर खाने पीने के साथ आदमियों से बातें करने में जुटा था, तो वहीं अंदर वैदेही औरतों के साथ काम कर रही थी। कुछ देर बाद अचानक उनके घर में शंख की ध्वनि गूंजी। इसी के साथ सभी औरतें घर के आंगन में इकट्ठा होकर मंगल गीत गाने लगीं। वैदेही ने सामने की तरफ देखा तो सूट बूट पहने एक लड़का खड़ा था। राघवेंद्र सहित उसका पूरा परिवार उसे घेर कर खड़े थे। मानव दादा आ गए, आज इतने बरसों बाद पूरा परिवार एक साथ जमा हुआ है, भीड़ में से एक औरत की आवाज आई। इसी के साथ वैदेही को समझ आ गया कि सामने भीड़ में घिरा लड़का कोई और नहीं मानव था, जो इंडिया वापस आ चुका था। वो सबके पैर छू रहा था और सब उसे आशीर्वाद दे रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, कितना बड़ा हो गया है, तो विदेश जाकर भी अपने संस्कार नहीं भूला। जवाब में मानव मुस्कुरा दिया। जब वो सबकी तरफ बढ़ रहा था, तब वैदेही ने एक झलक उसकी तरफ देखा। वो राघवेंद्र से बिल्कुल अलग था। उसके चेहरे से ही विनम्रता झलक रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो सबसे मिल रहा था। कौन कह सकता है कि ये राघवेंद्र का सगा छोटा भाई है, वैदेही ने सोचा। मानव को देखने के बाद उसने एक नज़र राघवेंद्र की तरफ डाली, जिसके चेहरे पर उसका गर्व और अभिमान साफ नजर आ रहा था। वो अपने परिवार वालों के बजाय अपने आदमियों के साथ खड़ा अपनी मूछों को ताव दे रहा था। अंदर वैदेही उन लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी और साथ ही उनसे इधर उधर की बातें कर रही थी, ताकि उन लोगों को उस पर शक ना हो। वहीं बाहर देव घूमते हुए लल्लन से टकरा गया। कहाँ बे, भगवान ने जो बटन जैसी दो बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये देखने के लिए दी हैं या फिर किसी से टकराने के लिए? ये तो आज खुशी का दिन है, वरना हम तुमको बताई देते कि हमसे टकराने वालों का हम का हाल करते हैं। यशवर्धन की मीटिंग में देव ने पहले ही लल्लन की फोटो देख ली थी। वो उसे देखते ही पहचान गया था। देव ने अपने दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों में गिरकर बोला, हमको माफ कर दो लल्लन भैया, हम गलती से आपसे टकरा गए थे, वरना आपको कौन नहीं जानता। इस बार हमें माफ कर दो, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। चल चल ठीक है, अब खड़ा हो जा, बोलते हुए लल्लन ने उसे ऊपर उठाया और फिर पूछा, हमने तुमको पहले देखा नहीं कभी, क्या नए हो गाँव में? अब क्या बताएं आपको भैया जी, नए क्या आए हैं, हमारे घर वालों ने हमें निकाल दिया है, सोचा काम की तलाश में यहाँ आ जाते हैं। सुना है दादा यहाँ किसी को बेरोजगार नहीं रहने देते, बस राघव दादा के आश्रय अपने कुछ कपड़े और घरवाली को लेकर यहाँ आ गए। अब कोई हमारे भैया जी के आश्रय यहाँ तक आ ही गए हो तो काम की तुमको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं बबुआ, ऐसा समझ लो कि काम मिल गया। कल सवेरे शहर के बाहर वाली शराब की भट्टी पर पहुँच जाना, लल्लन ने कहा। लल्लन से राघवेंद्र के नाम पर कुछ भी करवाया जा सकता था, वहीं राघवेंद्र ने भी उसे अपने छोटे भाई की तरह रखा था, इस वजह से उसने उसे बहुत से हक दे रखे थे। काम मिलते ही देव बहुत खुश हो गया। वो हाथ उठाकर खुशी से बोला, राघव दादा की जय हो, जाओ अब ऐस करो और अच्छा अच्छा खाना खाओ, लल्लन ने कहा और वहां से निकल गया। यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ, राघवेंद्र के यहाँ काम करके कुछ तो पता चलेगा ही, देव ने अपने मन में सोचा और फिर से इधर उधर घूमने लगा। शाम तक महाभोज खत्म हो चुका था, सब अपने अपने घर जा चुके थे। सबके जाने के बाद राघवेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ बैठा बातें कर रहा था। थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट करवाया, यू डोंट नो मैंने आप लोगों को कितना मिस किया, मानव के कहते ही राघवेंद्र ठहाके लगाकर हंस पड़ा। देख रही है आई, अपना छोटा सा मन्नू अब अंग्रेजी में बात करने लगा है, उसने कहा। सुमित्रा ने झट से आगे बढ़कर मानव की नज़र उतारी और बोला, हाँ तो मेरा मन्नू किसी अंग्रेज से कम है क्या, ये बाहर पढ़कर आया है, इसका बड़ा भाई राजनीति में नाम कमा रहा है, तो उससे बड़ा भाई और भाभी, बोलते हुए सुमित्रा ने आरती और शिवेंद्र की तरफ देखा और मुंह बना लिया, कुछ नहीं कर पाए। कुछ करे या ना करे, लेकिन आपके बेटे की तरह किसी की जान तो नहीं लेते ना, आरती ने ताना मारा। उसके ऐसा कहते ही राघवेंद्र ने गुस्से में उसकी तरफ देखा तो वो चुप हो गई। ये भाभी क्या कह रही है भैया, मानव ने पूछा। वो काफी सालों से बाहर पढ़ रहा था, इस वजह से उसे राघवेंद्र के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वहीं राघवेंद्र भी उसे इन सब से दूर रखना चाहता था। कुछ नहीं कह रही, तुम्हें तो पता है ना भाभी को मैं हमेशा से पसंद नहीं हूँ, लेकिन आई क्या हो जो मैं भी भाभी को नापसंद करने लग जाऊं। बोलते हुए राघवेंद्र ने गुस्से में तिरछी निगाहों से आरती की तरफ देखा। उसके ऐसे देखने की वजह से वो घबरा गई और अंदर चली गई। तो उसको छोड़, उसकी तो जुबान ही कड़वी है। अब जब मन्नू भी यहाँ आ गया तो मैं चाहती हूँ कि यशवर्धन की तरह तुम्हारा भी इंटरव्यू टीवी पर आए, सुमित्रा ने कहा। उसने भी उस दिन यशवर्धन का इंटरव्यू देखा था। उसके बाद से उसकी यही दिली ख्वाहिश थी कि राघवेंद्र के साथ साथ उसका पूरा परिवार इंटरव्यू के जरिए टीवी स्क्रीन पर आए, ताकि लोग उनकी संपन्नता को देख सकें। ओह दैट्स ग्रेट भैया, मुझे यहाँ का ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन देखना इस बार सीएम की पोजीशन आप ही की है, मानव ने कहा। अब तुमने कह दिया तो हमारी ही होगी छोटे, आज तक ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे मुंह से निकली हो और हमने पूरी ना की हो, राघवेंद्र ने जवाब दिया। वो एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता रहे थे, तो वहीं राघवेंद्र के मन में इंटरव्यू वाली बात घर कर गई थी। उन सबकी बातें खत्म होने के बाद राघवेंद्र लल्लन के साथ अपने आदमियों के पास बैठा था। अच्छा लल्लन, वाह, यशवर्धन का इंटरव्यू ली थी, उस रिपोर्टर का क्या नाम बताया था तुमने, राघवेंद्र ने याददाश्त पर जोर देकर पूछा। वैदेही रघुवंशी। क्या कड़क इंटरव्यू लिया था भैया जी उसने? तो उससे भी ज्यादा कड़क इंटरव्यू हमारा होना चाहिए। अभी के अभी न्यूज चैनल में फोन लगा और बोलकर कल के कल रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पहुंच जानी चाहिए, राघवेंद्र ने आदेश दिया। लल्लन उसी वक्त राघवेंद्र के बताए हुए काम पर लग गया। उसने जैसे तैसे प्रतीक के नंबर अरेंज किए और उसे फोन घुमाया। रात के लगभग 2 बज रहे थे। प्रतीक अपने घर पर सो रहा था, तभी उसके पास लल्लन का फोन आया। हेलो। प्रतीक आगे कुछ बोलता उससे पहले लल्लन बोल पड़ा। हम लल्लन बोल रहे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ से। राघवेंद्र प्रताप सिंह का नाम सुनकर प्रतीक खड़ा हो गया। उसने जल्दी से लैम्प की लाइन ऑन की। वैदेही और देव वहाँ पर गए हुए थे। उन दोनों के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे।
कहीं वैदेही और देव किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए, प्रतीक ने सोचा। अगले ही पल लल्लन की भारी आवाज आई। का हाल है रिपोर्टर बाबू? अब इतनी रात को आपने हमसे हमारा हालचाल पूछने के लिए तो फोन किया नहीं होगा, बोलिए क्या काम है, प्रतीक ने सीधे सीधे पूछा। हाँ, आप काफी समझदार हो तभी रिपोर्टर हो। हमने आपको ये कहने के लिए फोन किया था कि वो जो रिपोर्टर है वैदेही रघुवंशी, उसे कल तक निकोला भेज दीजिएगा, कल वो हमारे भैया जी का इंटरव्यू लेंगी। लेकिन वैदेही तो, प्रतीक ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि लल्लन ने उसे धमकी देते हुए कहा। सुन बे रिपोर्टर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने कह दिया कि कल शाम को भैया जी का इंटरव्यू टीवी पर लाइव आना चाहिए तो वो आएगा ही, अब हमें नहीं पता तुम कैसे करते हो, कब करते हो, कहकर उसने फोन कट कर दिया। उसके बाद वो राघवेंद्र के पास जाकर बोला, भैया जी हो गया है इंतजाम। शाबाश, राघवेंद्र ने खुश होकर कहा। अब कल के दिन हमारी सजावट के लिए बंदे बुलवा लेना, वो क्या है ना कि हमें यशवर्धन से ज्यादा अच्छा दिखना है। अपनी बात कहकर राघवेंद्र सोने चला गया था, लल्लन उसके बताए हुए कामों में जुट गया था। दूसरी तरफ लल्लन के फोन कॉल के बाद प्रतीक की नींद उड़ चुकी थी। उसने उसी वक्त वैदेही और देव को कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई। इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? मैं कल उसके यहाँ इंटरव्यू लेने चली जाऊंगी, आप वहां से अपनी टीम भिजवा दीजिएगा, वैसे भी हम भी तो यही चाहते थे, वैदेही ने कहा। लेकिन वैदेही, अब प्लान चेंज हो गया है, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम वहां पर रह रही हो, अगर गलती से भी उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, प्रतीक ने चिंतित स्वर में कहा। इसकी चिंता आप मत कीजिए और सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं तो आज राघवेंद्र के घर जाकर उनकी पार्टी तक इंजॉय करके आ गई, अब कल इंटरव्यू भी ले आऊंगी, कोई नहीं कह सकता कि कल सबको खाना परोसने वाली विद्या ही वैदेही रघुवंशी है, वैदेही ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया और प्रतीक को बाकी के इंतजाम करने के लिए बोल दिया। लेकिन मैं कल आपके साथ नहीं आ पाऊंगा मैम, मुझे अब राघवेंद्र के यहाँ काम मिल गया है, अगर मैं वहां गया तो वो मुझे पहचान लेंगे, देव ने बताया। तुम भी प्रतीक सर की तरह टेंशन ले रहे हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, हमेशा की तरह टीम हमसे पहले पहुंचेगी और मैं वहां इस तरह से जाऊंगी जैसे कि अभी यहां पहुंची हूं। राघवेंद्र को पता नहीं है कि उसने इंटरव्यू देने की पहल करके खुद ही अपने गले में मुसीबत मोल ले ली है, वैदेही ने मुस्कुराकर कहा। जहां राघवेंद्र इंटरव्यू के बारे में सोचकर नींद नहीं ले पा रहा था, तो वहीं कल होने वाले इंटरव्यू के बारे में सोचकर वैदेही की नींदें उड़ी हुई थी। कैसा लगा आज का पाठ? आपको क्या लगता है किसका इंटरव्यू ज्यादा धमाकेदार होगा?